ये रेडियो नेपाल है। हिंदी समाचार में आपका स्वागत है और मैं हूं मुकेश कुमार मिश्र। आरंभ में मुख्य समाचार। नेपाल खुला शौच मुक्त और सरसफाई में पूर्ण अग्रसर राष्ट्र हुआ घोषित। प्रधानमंत्री ओली ने कहा, देश ने विकास और सभ्यता की दिशा में बढ़ाया है नया कदम। ललितपुर के सैपू में बनने वाले प्रदेश प्रमुख और मुख्यमंत्री संपर्क कार्यालय व निवास का प्रधानमंत्री ओली ने किया शिलान्यास। और भारत के गुजरात में हुई बस दुर्घटना में 22 लोगों की मौत। अब समाचार विस्तार से। नेपाल को खुला शौच मुक्त एवं सफाई में अग्रसर राष्ट्र घोषित किया गया है। आज काठमांडू में पेयजल तथा साफ सफाई मंत्रालय द्वारा आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने नेपाल को खुला शौच मुक्त राष्ट्र घोषित किया। मौके पर प्रधानमंत्री ओली ने कहा कि खुला शौच मुक्त घोषणा के साथ ही देश ने विकास और सभ्यता की दिशा में नया कदम बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि नेपाल दक्षिण एशिया में ही पहला राष्ट्र है जो खुला शौच मुक्त घोषित हुआ है और अब स्वास्थ्य और साफ सफाई संबंधी जनचेतना को अभियान के रूप में गांव गांव तक पहुंचाना चाहिए। उन्होंने बताया कि अब जल्द ही देश को सड़क मानव मुक्त घोषित किया जाएगा। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने प्रदेश प्रमुख और मुख्यमंत्री संपर्क कार्यालय और निवास के लिए आज ललितपुर के सैबू आवास क्षेत्र भैंसेपाटी में नए भवन निर्माण का शिलान्यास किया। 27 रोपनी 12 आना यानी करीब 2 बीघा जमीन में 97 करोड़ 11 लाख रूपये की लागत में अगले 2 साल में भवन निर्माण संपन्न होने की बात शहरी विकास एवं भवन निर्माण विभाग ने बताई। इसमें सभी 7 प्रदेशों के लिए 7 ब्लॉक होंगे और हर ब्लॉक में 2-3 मंजिला इमारतें होंगी, यानी कि अत्याधुनिक और सुविधा संपन्न 14 भवन बनाए जाएंगे। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने गरीबी निवारण कोष को पिछले अनुदान के ढर्रे में बदलाव लाते हुए गरीबी निवारण संबंधी काम करने वाले मंत्रालय और निकाय के लिए थिंक टैंक के रूप में रूपांतरित होने का निर्देश किया है। प्रधानमंत्री निवास बालवाटार में आज संपन्न हुई कोष की बैठक में प्रधानमंत्री ओली ने कहा कि प्राप्त रकम का सदुपयोग हो रहा है या नहीं, इसका भी लेखा जोखा करने का निर्देश उन्होंने किया। साथ ही उन्होंने कहा कि सिर्फ अनुदान मुहैया कराना ही नहीं बल्कि नीतिगत परिवर्तन के जरिए गरीबी उन्मूलन कराना भी कोष का उद्देश्य है। मौके पर कोष के अध्यक्ष निर्मल भट्टराय ने बताया कि कोष को थिंक टैंक के रूप में विकसित करने के लिए मौजूदा आर्थिक वर्ष के लिए 5 करोड़ रूपये का बजट स्वीकृत करने और विश्व बैंक के सहयोग में संचालित 19 अरब रूपये के बजट की पुनर्संरचना कर स्थानीय तह मार्फत कार्यक्रम संचालित करने का निर्णय किया गया है। नेपाली कांग्रेस के सभापति शेर बहादुर देउवा ने कहा कि लोकतंत्र के मेरुदंड के रूप में रहे प्रेस की स्वतंत्रता पर सरकार हस्तक्षेप करने की कोशिश कर रही है। आज काठमांडू में एक कार्यक्रम के दौरान सभापति देउवा ने कहा कि प्रेस स्वतंत्रता की रक्षा के मामले में नेपाली कांग्रेस कोई समझौता नहीं करेगी। मौके पर कांग्रेस उपसभापति विमलेन्द्र निधि ने आरोप लगाते हुए कहा कि सत्ता पक्ष के निर्देश पर ही कांग्रेस के ऊपर एक के बाद एक करके हमले किए गए हैं। अर्थमंत्री डॉ युवराज खतिवड़ा ने कहा कि बैंकिंग सेवा पहुंचने से बाकी रहे 17 स्थानीय तहों में भी पुस महीने के भीतर बैंक सेवा पहुंचा दी जाएगी। उन्होंने बताया कि देश में गरीबी रेखा से नीचे रही करीब 11 लाख जनसंख्या को विभिन्न पेशा और व्यवसाय में लगाकर 3 साल के अंदर गरीबी का अंत करने के उद्देश्य के साथ सरकार काम कर रही है। आज काबरे की पनौती में एक कार्यक्रम के दौरान अर्थमंत्री डॉ खतिवड़ा ने ये बातें कहीं। रोलपा की सुनील स्मृति गांव पालिका वार्ड नंबर 3 में हुई बस दुर्घटना में 2 लोगों की मौत हो गई। रोलपा के सुली चौक से सिर्फ जाती हुई बस सड़क से करीब 200 मीटर नीचे लुंगरी नदी में गिरी थी। इस हादसे में बस चालक लुंगरी गांव पालिका 3 जुतुंग खोला के 22 वर्षीय याम बहादुर करती और वार्ड नंबर 2 के 19 वर्षीय सूर्यलाल जीएम की हुई मौत की जानकारी पुलिस ने दी। नेपाली बाजार में प्याज का मूल्य अचानक बढ़ जाने के बाद वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने कालीमाटी स्थित प्याज गोदाम में छापा मारा है। प्याज के मूल्य में अस्वाभाविक रूप में बढ़ोतरी होने के बाद विभाग ने प्याज गोदाम में छापा मारा है। भारत द्वारा प्याज निर्यात पर रोक लगाते ही नेपाली बाजार में प्याज के मूल्य में अस्वाभाविक बढ़ोतरी हो गई। कुछ दिन पहले तक प्रति किलो 100 रूपये तक बिकता रहा प्याज का खुदरा मूल्य आज कालीमाटी बाजार में प्रति किलो 135 पहुंच गया है। समाचार आप रेडियो नेपाल से सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
छक्का पर्नु छ
छ छ
नो छ गुना छ
के छ
जम्मा 9 रुपियाँमा 55 MB डाटा पाइन्छ।
साँच्चै सस्तो
नेपाल टेलिकमको डेटा र प्याकमा बिहान 6 बजेदेखि बेलुका 6 बजेसम्म 9 रुपियाँमा 55 MB डाटा प्याक *1415# डायल गर्नुहोस्।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारतीय राज्य गुजरात के
छक्क पर्नु
भारतीय राज्य गुजरात के अंबाजी में त्रिशूलिया घाट के पास एक बस खाई में गिर गई। बस में 50 से ज्यादा लोग सवार थे। बारिश होने की वजह से बस ड्राइवर नियंत्रण खो बैठा, जिसके कारण बस खाई में गिर गई। इस हादसे में अब तक 22 लोगों की मौत की खबर है। मारे गए लोगों में 14 पुरुष, 3 महिलाएं और 4 बच्चे शामिल हैं। 5 लोगों की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। हादसा आज शाम को हुआ है। हादसे की सूचना पाकर पुलिस प्रशासन की पूरी टीम मौके पर पहुंची है। मौके पर एम्बुलेंस समेत डॉक्टरों की भी टीमें पहुंची हैं। घटनास्थल पर लाइट का भी इंतजाम किया जा रहा है। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां घायलों की हालत अभी भी गंभीर बताई जा रही है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस हादसे पर शोक व्यक्त किया है। इस हादसे पर गृहमंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट कर शोक जताया है। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने कहा है कि अगर दुनिया के दूसरे देश ईरान के खतरे से निपटने के लिए एक साथ नहीं आए तो इसका असर विश्व बाजार के कच्चे तेल की आपूर्ति पर पड़ेगा और तेल की कीमतें अप्रत्याशित तरीके से बढ़ सकती हैं। अमेरिका के टीवी चैनल CBS के एक कार्यक्रम 60 मिनट्स में उन्होंने कहा कि ईरान और सऊदी अरब के बीच तनाव बढ़ा तो उसका असर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। उन्होंने एक बार फिर इस बात से इनकार किया कि उनके आदेश पर सऊदी पत्रकार जमाल खशोजी की हत्या हुई थी। बीते साल अक्टूबर में इस्तांबुल स्थित सऊदी वाणिज्य दूतावास में जमाल खशोजी की हत्या कर दी गई थी। क्राउन प्रिंस सलमान ने कहा कि वो चाहते हैं कि सऊदी अरब और ईरान के बीच चल रहे तनाव का राजनीतिक हल तलाशा जाए, क्योंकि दोनों के बीच युद्ध हुआ तो उसका प्रभाव वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। उनका कहना था कि पूरी दुनिया की तेल की सप्लाई का 30% विश्व व्यापार का 20% और पूरी दुनिया की GDP का 4% योगदान मध्य पूर्व के इलाके से ही आता है। नेपाल खुला शौच मुक्त और सफाई में पूर्ण अग्रसर राष्ट्र हुआ घोषित। प्रधानमंत्री ओली ने कहा, देश ने विकास और सभ्यता की दिशा में बढ़ाया है नया कदम। ललितपुर के सैंबू में बनने वाले प्रदेश प्रमुख और मुख्यमंत्री संपर्क कार्यालय व निवास का प्रधानमंत्री ओली ने किया शिलान्यास। और भारत के गुजरात में हुई बस दुर्घटना में 22 लोगों की मौत। इसी के साथ हिंदी समाचार से मुझे अनुमति दीजिए। सुनते रहिए रेडियो नेपाल। नमस्कार, शुभरात्रि।